कोटि से प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार से भी कहीं अधिक बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। एक ईमानदार साधक साधक जने यदि भयभीत होता है तो वह है वासना से। वासना साधक को बहुत भयभीत करती है। शिखर से आदमी को इस प्रकार से, साधक को इस प्रकार से गिराती है कि चकनाचूर हो जाता है। एक ईमानदार साधक इसलिए इससे बहुत भयभीत रहता है। इस वासना का निराकरण साधक जनों एक बड़े सुंदर शब्द से होता है। शब्द सुनने को, करने वाला शब्द उपासना से। वासना का निराकरण किससे होता है? उपासना से। बिन विवेक एवं वैराग्य उपासना पंगु। करने की चीज है भक्ति कैसी, उपासना कैसी, करने की चीज है। यदि विवेक युक्त बुद्धि से, वैराग्य युक्त बुद्धि से न की जाए तो ऐसी उपासना को पंगु कहा जाता है। वह उपासना बहुत करने के बावजूद भी आपको वासना मुक्त नहीं करेगी। एक साधक वासना में डूबा रहता है। आपने सुना हुआ है धन की वासना, काम की वासना, यशमान की वासना, प्रशंसा की वासना, कुर्सी की वासना, वासनाओं का कोई अंत नहीं है। बड़े साधारण शब्दों में संत महात्मा यूं समझाते हैं कि वासना है क्या। ऐसे जो किए हुए कर्म हैं उनके संस्कार जो हमारे अंतःकरण पर पड़े रहते हैं, जो प्रेरक हैं आगामी कर्मों के लिए, उसे वासना कहा जाता है। दबे रहते हैं, मौका ढूंढते हैं, जैसे ही मौका इन्हें मिलता है वैसे ही साधक को दबोच लेते हैं और दबोच के अपने अनुसार चलाते हैं। वासना जब तक अपने शरीर में सक्रिय है साधक जनों, तब तक परमात्मा को या सद्गुणों को सक्रिय नहीं होने देगी। अतएव हर साधक को इससे भयभीत रहने की आवश्यकता, हर साधक को इसके उन्मूलन की आवश्यकता। इट मस्ट बी इरेडिकेटेड, इट मस्ट बी इरेडिकेटेड। एकमात्र साधन इस वासना को उन्मूल करने का, इरेडिकेट करने का, उपासना। पुनः अर्ज करूंगा, उपासना तो आप कहोगे कि हम करते हैं, राम नाम की उपासना करते हैं, राम राम जपते हैं, लेकिन साधक चलो कहीं ना कहीं हमारी उपासना में कमी है। जो वासना अभी भी खत्म नहीं हुई है, हर एक बंदा विदाउट एन एक्सेप्शन इसका सफरर है, हर एक इससे त्रस्त है। किसी न किसी प्रकार की वासना हर एक को घेरे हुए है, बड़ी रुलाती है, बहुत दुख देने वाली, मुख अशांति का कारण, अतृप्ति का कारण, असंतुष्टि का कारण वासना। एक चक्र है जो कहीं नहीं पहुंचने देता आपको। ये वासना मार्ग नहीं है, चक्र है। मार्ग तो वह है बेटा जो लक्ष्य तक पहुंचा के रहेगा, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, लेकिन ये मार्ग नहीं है, ये चक्र है, घुमाने वाला चक्र है, मानो अनएंडिंग। इसको उपासना से खत्म कीजिएगा। उपासना के अतिरिक्त कोई दूसरा श्रेष्ठतर उपाय नहीं है, कोई अमोघ उपाय इसका नहीं है। वासना उन्मूल करना चाहते हो तो उपासना कीजिएगा, पर आपकी उपासना विवेक युक्त होनी चाहिए, आपकी उपासना वैराग्य युक्त होनी चाहिए, तो उपासना रंग लाएगी। तो उपासना एक ना एक दिन इस वासना को इरेडिकेट कर देगी, निकाल के रख देगी, उन्मूल करके रख देगी। तब आपको भजनानंद मिलेगा, तब आपको परमानंद की प्राप्ति होगी, तब आपको परम शांति का अनुभव होगा, तब आपको ईश्वर अनुभूति होगी, तब आपको बोध होगा, ओह मैं और मेरा राम एक, कोई अंतर नहीं, वह अंशी है और मैं अंश। तब आप आइडेंटिफाई कर सकोगे अपने आप को परमात्मा के साथ, अन्यथा नहीं है। तो ये साधक जनों माया का ही खेल है। वासना क्या समझेगा कि माया का खेल है। जैसे माया भरमाती है, सत्य को असत्य कहती है, ऐसे ही ये वासना बाहर नहीं निकलने देती। विवेक युक्त भक्ति हो, विवेक युक्त बुद्धि हो इस साधक जनों, तो आपको पता लगता है एक परमेश्वर एवं आत्मा के अतिरिक्त जो भी वस्तुएं, जो भी व्यक्ति इस संसार में दिखाई देते हैं, सबके सब नश्वर है। इन नश्वर का त्याग करने की जरूरत, इन नश्वर से बच के रहने की जरूरत। इस नश्वर में उलझ जाओगे तो अनश्वर तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ये सत्य मानिएगा महाराज, आप जितना कुछ मर्जी कर लीजिएगा, जो मर्जी कर लीजिएगा, जब तक आप मूल को नहीं पकड़ते, जब तक मूल आपका खराब रहता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपके फूल पत्ते फल इत्यादि जो है वह ठीक होंगे? वे नहीं होंगे। एक दृष्टांत के माध्यम से साधक शरों इस विवेक को समझने की कोशिश करते हैं। ये विवेक क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये विवेक बताएगा। सत क्या है, असत क्या है, ये विवेक बताएगा। नश्वर क्या है, अनश्वर क्या है, ये विवेक बताएगा। त्यागने योग क्या है, ये विवेक बताएगा। करने योग क्या है, ये विवेक बताएगा। इतनी सारी चीजें विवेक बताता है। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज इन अवर लाइफ, इन द लाइफ ऑफ ए साधक। दो मित्र है, एक का नाम है वैभव, दूसरे का नाम है विवेक। छोटी आयु में दोनों के माता पिता की मृत्यु हो गई है, बेचारे अनाथ हैं, पढ़े लिखे नहीं, पढ़ लिख नहीं सके, अनपढ़ है, तो गरीब भी है। झुग्गी झोंपड़ियां होती हैं, उनमें निवास करते हैं। दोनों की झोंपड़ियां पासवासी हैं, मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, युवावस्था है, भरपूर यौवन है, दोनों के ऊपर शरीर अच्छा है, बलिष्ठ है, बलवान है दोनों। आज मन ही मन दोनों ही इकट्ठे जाते हैं जंगल में, जंगल से लकड़ियां काटते हैं, लकड़ियां काट के उन्हें बेच के तो अपना गुजारा करते हैं, ये उनकी जीवनचर्या है। आज दोनों इकट्ठे बैठे सोचा, सोचो ना भक्त चलो, 25-25 26-26 साल की आयु हो गई है, यदि इस वक्त भी सोच आ गई है तो ये परमात्मा की कृपा है। क्या सोच है? विवेक कहता है, वैभव क्या जिंदगी यही है? सुबह उठे, कुल्हाड़ी पकड़ी, जंगल की ओर निकल गए, जाके वहां से लकड़ी काटी, इकट्ठी की, बंडल बनाया, बंडल बना के बाजार आके बेचा, मजदूरी मिली, पैसे मिले, अन्न इत्यादि खरीदा, खाना बनाया, खाया और सो गए, अगले दिन फिर जाके। क्या जिंदगी यही है? क्या जिंदगी यही है, कमाना, खाना, सोना और फिर कमाना, खाना और सोना? क्या जिंदगी यहीं तक सीमित है? आज विवेक के मन में ये विवेक की बात जागृत हुई है। वैभव, अरे छोड़ यार, क्या बातें कर रहा है? विवेक यहां तक कहता है, वैभव पढ़े लिखे होते तो शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ होता, शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ होता तो हमारा जीवन का रुख, हमारा जीवन और तरह का होता। अब क्या जीवन है? लक्ष्यहीन जीवन, एमलेस जीवन हम जी रहे हैं। खाना पीना सोना ये क्या है? पशुओं का भी काम, मानव भी है, एक गुण जपे राम का नाम, वह तो किया ही रहे हैं। आज अपने जीवन पर बहुत थू थू कर रहे हैं। वैभव कहता है, छोड़ विवेक, क्या बातें कर रहा है? ये चीज हो ही नहीं सकती, उसका क्या सोचना? अब तो ये सोच, कहीं से प्रचुर मात्रा में धन मिल जाए, कहीं से संपत्ति मिल जाए, तो शेष जीवन जो है वह आराम से गुजर सके। जंगल की बात है, दोनों बैठे, लकड़ियां काट ली हुई हैं, दोनों ने गट्ठर बांधे हुए हैं, बस वापसी की तैयारी है। उसी वक्त एक चीख पुकार की आवाज सुनी, लगता है कोई मुसीबत में है। एक दूसरे को कहते हैं, ये चीख पुकार जंगल में मानो कोई मुसीबत में है। गट्ठर बोझा जो था उसको वहीं रखा, दोनों उस चीख पुकार की जो आवाज थी, ध्वनि, उस साउंड को फॉलो किया और पहुंचे। जहां से आवाज आई वहीं पहुंचे, दोनों के हाथ में कुल्हाड़ियां हैं। देखा एक शिकारी, उस पर चीते ने वार किया हुआ है, चीता बुरी तरह से उस शिकारी को दबोच रहा है, मानो खाने को तैयार है, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं उसके बचने की। उसी वक्त दोनों ने अपनी अपनी कुल्हाड़ी से दौड़ के तो चीते पर वार किया, उसे घायल किया। घायल चीता अपनी जान को बचाता हुआ भाग गया, इस शिकारी बच गया। इस घायल शिकारी को उन दोनों युवकों ने उठा के तो गांव की ओर ले जाना चाहा, इसका इलाज होना चाहिए, हो सकता है ये बच जाए। रास्ते में क्या देखता है, सिपाही एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, इसी शिकारी को। ये शिकारी राजा है। राजा ने इतना ही कहा, यदि ये युवक ना होते तो मैं आज मर गया होता। मुझ प्रजापालक को इन्होंने जान बख्शी है, इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। अतएव अस्पताल जहां ले जाना था उस राजा को ले जाया गया, इलाज इत्यादि हुआ। ठीक होने के बाद दोनों युवकों को बुलाया, राजदरबार में दोनों युवक उपस्थित हुए। मैं आपका ऋणी हूं, राजा साहब ने शुरू किया। युवको, मैं आपका ऋणी हूं, मेरा बहुत बहुत प्यार, मेरा बहुत बहुत नमस्कार स्वीकार करो। क्या चाहते हो? मैं आप दोनों को पुरस्कृत करना चाहता हूं, पुरस्कार देना चाहता हूं। वैभव ने झट से कहा, महाराज यदि खुश हैं तो मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिएगा, ताकि मेरा जीवन यापन, जो शेष जीवन है, वह ठीक चल सके। दीजिएगा, हुक्म हुआ राजा साहब का, इसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तत्काल दे दी जाए। विवेक की बारी आई, कहता है राजा साहब, छोटा बच्चा था, माता पिता की डेथ हो गई, अतएव सब कुछ मन कमन में रह गया, पढ़ नहीं सका। बड़ी लालसा थी, पढ़ू, पढ़ के कुछ बनूंगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। बेशक मर गए, लेकिन उसके बाद भी उनका नाम रोशन करूंगा। अतएव पढ़ने की इच्छा मर गई, खत्म हो गई, पढ़ ना सका। यदि मेरी पढ़ाई का अब भी प्रबंध किया जा सके तो आपकी मेहरबानी होगी। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरी पढ़ाई की व्यवस्था कर दीजिएगा, मैं आपका ये उपकार कभी जिंदगी में भुलाऊंगा नहीं। हुक्म हो गया। अमोक आचार्य के आश्रम में इस युवक को पहुंचा दिया जाए, सारी की सारी व्यवस्था राज से होगी। बहुत प्रसिद्ध आश्रम है, वहां आश्रम में विवेक चला गया है। 12 वर्ष तक वह रहा है, शुरू से पढ़ाई शुरू की, पुराने संस्कार सुसंस्कार जाके, वासना भी भीतर है, कुसंस्कार भी भीतर है, तो सुसंस्कार भी भीतर ही हैं। मौका मिला, आचार्य मिले, संत मिले, उन्होंने कुसंस्कारों को दबा दिया नीचे और सुसंस्कारों को उभार दिया। विवेक इस वक्त सुसंस्कार युक्त हो गया हुआ है। अतएव पढ़ाई की शार्प मेमोरी, इतना पता ही नहीं था कि मुझे ये सब कुछ इतनी जल्दी याद हो जाएगा। शास्त्रों का अध्ययन किया, प्रकांड विद्वान बन गया, अनेक सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई, अनेक सारी अनुभूतियां मिली, बहुत प्रसिद्ध हो गया, दूर दूर तक उसकी ख्याति, मानो एक सुंदर फूल खिल गया जिसका सौंदर्य दूर दूर तक, जिसकी महक दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गई। 12 वर्ष का समय बीत गया है, 13वां साल लग गया है। आज सोचा, चलो अपने गांव की ओर चलता हूं, परमात्मा की कृपा से कुछ प्राप्ति हुई है, तो यदि इस प्राप्ति से दूसरों को कुछ प्राप्त हो सके, जो कुछ मिलता है साधक के लिए अपने पास रखना बड़ा मुश्किल, वह उसे बांटना चाहता है, देना चाहता है। जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, शायद मैं दूसरों को भी प्राप्त करवा सकूं, इसी आशय से आज वह अपने गांव की ओर चल पड़ा है। झुग्गी झोंपड़ियों में पहुंचा है। अरे वैभव, तू अभी भी झुग्गी झोंपड़ी में? इतना सारा धन, इतनी संपत्ति, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कोई छोटी संपत्ति नहीं मेरे सामने। तुझे राजा साहब ने दी थी और तू अभी भी झोंपड़ी में रह रहा है। तूने क्या अपनी हालत बना रखी है? क्या हो गया है वैभव? देवियों सज्जनों, इतना कमजोर हो गया हुआ है, इमेशिएटेड, मानो हड्डियां दिख रही हों, इस प्रकार की उसकी हालत हो गई है। आंखें धस गई हुई हैं, चेहरा पिचक गया हुआ है, वैभव वैभव नहीं रहा, मानो 10-12 साल में बुढ़ापे ने इस प्रकार से उसे घेर लिया है कि वह एक शव की तरह चलता फिरता शव जैसा होता है, वैसा दिखने लग गया है। क्या हुआ है तुम्हें? विवेक ने पूछा। वैभव की इतनी कमजोरी कि वह विवेक को पहचान नहीं सका, लेकिन विवेक ने तो पहचान लिया। विवेक जो ठहरा, एक पात्र को पहचानता है, कुपात्र को भी पहचानता है। विवेक जो हुआ, इसी विवेक की चाह है साधक जनों, इसी विवेक की जरूरत है एक साधक को। ये विवेक ही जीवन में होना चाहिए। क्या हुआ है तुम्हें? कहा वैभव, क्या बताऊं क्या हुआ, बताते क्यों नहीं? इतना धन लेके आए थे, क्या रास्ते में किसने लूट लिया? नहीं विवेक, धन ने मुझे लूट लिया। शब्द सुनो, विवेक पूछता है, क्या इतना धन राजा साहब ने तुम्हें दिया था, क्या रास्ते में किसी ने लूट लिया, छीन लिया? नहीं, धन ने मुझे लूट लिया। धन मिलते ही मेरे कुसंस्कार उदित हो गए। सत्संगति पाके विवेक के सुसंस्कार उदित हो गए, धन पाके वैभव के कुसंस्कार उदित हो गए।
बच्चों, देवियों सज्जनों, इस अर्थ से धन को क्या कहते हैं? अर्थ। शास्त्र कहता है इस अर्थ के साथ 15 अनर्थ जुड़े हुए हैं। जो इन अनर्थों से बच सका, धन उसका कुछ ना बिगाड़ सका। जो इनके चंगुल में फंस गया, वह कम से कम इस जन्म में तो नहीं निकल सकेगा। मेरे कुसंस्कार जागृत हो गए, कुसंगति में पड़ गया, विलासी जीवन बिताने लग गया, शरीर जर्जर होता गया। देख, मेरा शरीर अंदर से खोखला है, कुछ नहीं रहा इसमें, मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। विवेक, सचमान, परमेश्वर द्वारा दी हुई इस अनमोल रचना को, परमेश्वर द्वारा दिए हुए इस अनमोल जीवन का मैं सदुपयोग नहीं कर सका, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार। विवेक सांत्वना देता है, मित्र जीवन अभी शेष है, यह खत्म नहीं होता। शरीर खत्म होता है, जीवन नहीं खत्म होता। न जाने कब से चल रहा है और आगे कब तक चलता रहेगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। पीठ पर हाथ रखा, उसे गले लगाया। शेष जीवन का तू सदुपयोग करेगा, मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जो तेरे साथ जाने वाली है, जिसे कोई लूट नहीं सकेगा। तू कह रहा ना, तुझे धन ने लूट लिया है, मैं तुम्हें ऐसा धन दूंगा जिसे कोई लूट नहीं सकेगा, जो तेरे साथ जाएगा, जो तेरी संपत्ति है, जिसका परमात्मा आदर करता है। मैं तुम्हें ऐसी संपत्ति का मालिक बना दूंगा। समय हो गया है साधक जनों, इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे अगले सप्ताह, नहीं उससे अगले सप्ताह। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद है।